दिन भर 16 अप्रैल दिन रविवार, मैं हूँ वात्सल्य राय। कोरियाई प्रायद्वीप में बढ़ते तनाव के बीच अमरीकी उपराष्ट्रपति माइक पेंस पहुंचे दक्षिण कोरिया।
The opportunity for me to be here today at such a time as this is a great privilege for me.
तीन तलाक पर पाबंदी के खिलाफ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, लेकिन पाबंदी की मांग करने वालों ने कहा,
माइंडसेट को अब चेंज करना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन हम कोशिश जरूर करेंगे।
और संग संग गुनगुनाओगे में बात होगी हेमंत कुमार के सदाबहार संगीत और गीतों की।
ये नयन डरी डरी, ये जाम भरी भरी।
लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार संदीप सोनी से। कोरियाई प्रायद्वीप में बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका के उपराष्ट्रपति माइक पेंस बातचीत के लिए दक्षिण कोरिया पहुंच गए हैं। खास बात यह है कि उत्तर कोरिया का बैलिस्टिक मिसाइल प्रक्षेपण विफल होने के कुछ ही घंटों बाद माइक पेंस दक्षिण कोरिया पहुंचे हैं। उपराष्ट्रपति माइक पेंस के साथ दक्षिण कोरिया पहुंचे अमरीकी अधिकारियों ने उत्तर कोरिया के मिसाइल परीक्षण पर कोई हैरानी नहीं जताई है। उत्तर कोरिया ने यह परीक्षण संयुक्त राष्ट्र प्रस्तावों की अवहेलना करते हुए किया, और इससे एक दिन पहले उसने अमरीका से यह भी कहा था कि वो किसी भी तरह के संघर्ष से पीछे नहीं हटेगा। तुर्की में संसदीय शासन प्रणाली हो या राष्ट्रपति शासन प्रणाली, इस सवाल पर देश में आज जनमत संग्रह हुआ है। खबरों के मुताबिक लोगों ने इस मुद्दे पर बढ़ चढ़कर अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। मतपत्र पर कोई सवाल नहीं छपा था और सिर्फ हाँ या ना का विकल्प दिया गया है। तुर्की में लोगों का मानना है कि राष्ट्रपति इस कदम के जरिए प्रधानमंत्री का पद समाप्त करना और सारी शक्तियां राष्ट्रपति में समाहित करना चाहते हैं। इस बारे में कुर्द समर्थक HDP पार्टी के एक नेता का कहना है,
ये
नए दरवाजे खोलने का एक अवसर है। नतीजे के तौर पर लोकतंत्र को जीतने दीजिए, आजादी को जीतने दीजिए, देश को जीतने दीजिए। ये थे सीरिया में कुर्द समर्थक HDP पार्टी के एक नेता के शब्द। आप सुन रहे हैं BBC समाचार। सीरिया से खबरें मिल रही हैं कि घेराबंदी वाले इलाकों से निकाले गए लोगों के काफिले पर शनिवार को हुए बम हमले में मरने वालों की संख्या 100 से अधिक हो गई है। खबरों में यह भी कहा गया है कि मरने वालों में बड़ी संख्या बच्चों की है। ब्रिटेन स्थित सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स के मुताबिक इस हमले में कुछ सैनिक और उसके राहत कर्मी भी मारे गए हैं। यूरोप पहुंचने की कोशिश कर रहे लगभग 20 प्रवासियों की लीबिया के तट पर डूबने से मौत हो गई है। राहत कर्मियों को उनके शव मिले हैं। इटली के तट रक्षकों का कहना है कि बीते 2 दिनों में 5,000 से अधिक लोगों को ऐसी नौकाओं से उतारा गया है जो कभी भी डूब सकती है। माना जा सकता है कि इस समय समुद्र शांत है और मौसम सुहावना होने की वजह से प्रवासियों ने भूमध्य सागर को पार करने की कोशिशें तेज कर दी हैं। रोम में सेंट पीटर्सबर्ग में ईस्टर पर्व के लिए आज हजारों श्रद्धालु पहुंचे, जहां पोप फ्रांसिस की मौजूदगी में प्रार्थना सभाओं का आयोजन किया गया। इस मौके पर पोप फ्रांसिस ने दुनिया भर के नेताओं से कहा कि वे संघर्ष और हथियारों के कारोबार को रोकने के लिए साहस का परिचय दें। पोप फ्रांसिस ने खास तौर पर मध्य पूर्व और अफ्रीका में शांति के लिए प्रार्थना की। आप सुन रहे हैं BBC समाचार। नेपाल की राजधानी काठमांडू में सेना के एक ठिकाने पर चीन और नेपाल ने अपना पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू कर दिया है। नेपाल का कहना है कि 10 दिन चलने वाला ये संयुक्त सैन्य अभ्यास चरमपंथ निरोधक कार्रवाई पर केंद्रित है, लेकिन पड़ोसी देश भारत इससे चिंतित हो सकता है। नेपाल पर भारत का राजनीतिक और सांस्कृतिक प्रभाव काफी अधिक है, लेकिन नेपाल के आर्थिक विकास में चीन ने भारत से अधिक निवेश कर रखा है। वहीं नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी 5 दिन की राजकीय यात्रा पर कल दिल्ली पहुंच रही हैं। ओडिशा के भुवनेश्वर में भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शामिल होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात पहुंच गए हैं। वे कल पाटीदार बहुल इलाके में एक रैली करने वाले हैं। 3 तलाक के मुद्दे पर भारत के कुछ हिस्से में जारी बहस के बीच ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने साफ कर दिया है कि वो शरिया कानून में किसी भी तरह की सरकारी दखलंदाजी के खिलाफ है। BBC समाचार।
बीबीसी हिंदी से दिन की दूसरी सभा दिन भर आप सुन रहे हैं रेडियो के साथ साथ bbchindi.com और मोबाइल पर भी लाइव। रविवार की शाम है, दिन ढलने के बाद उत्तर भारत में गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। दिल्ली में तापमान है करीब 36 डिग्री सेल्सियस, लेकिन कोरियाई प्रायद्वीप में बने तनाव को लेकर पैदा हुई गर्मी बरकरार है। हमने सुबह के प्रसारण में आपको बताया था कि दक्षिण कोरिया के अधिकारियों के हवाले से खबर आ रही है कि उत्तर कोरिया ने एक मिसाइल का परीक्षण किया है जो नाकाम हो गया है। दक्षिण कोरिया ने इसे लेकर उत्तर कोरिया को एक बार फिर चेतावनी दी है। वहीं अमरीकी उपराष्ट्रपति माइक पेंस भी दक्षिण कोरिया पहुँच गए हैं। पूरे घटनाक्रम पर बीबीसी संवाददाताओं के भेजे ब्यौरे का सार सुना रही हैं हरिता कांडपाल।
अमेरिका के उपराष्ट्रपति माइक पेंस उत्तर कोरिया के परमाणु और मिसाइल कार्यक्रम को लेकर रणनीति पर चर्चा करने के लिए दक्षिण कोरिया पहुंच गए हैं। उनका दौरा शुरू होने के ठीक पहले दक्षिण कोरिया ने दुनिया को खबर दी कि उत्तर कोरिया ने एक और मिसाइल का परीक्षण किया है। अधिकारियों के मुताबिक पूर्वी बंदरगाह शिनपो से छोड़ी गई एक मिसाइल का परीक्षण नाकाम रहा। इसके पहले कल उत्तर कोरिया ने राजधानी प्योंगयांग में परेड निकालकर शक्ति प्रदर्शन किया था, जिसमें लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का प्रदर्शन किया गया था। उत्तर कोरिया के घटनाक्रम पर दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता चो जुन यक ने कहा,
बुखानी ओजे यल्ब्योंगशिकेसो गक्काजी गोंग्योंगयांग मिसाइल नेबोइगो ओनल थान्दो मिसाइल बालसारेल गामेहान गोसेन।
उत्तर कोरिया ने कल की सैन्य परेड में कई तरह की मिसाइलों का प्रदर्शन किया और आज बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षण किया। ये शक्ति प्रदर्शन पूरी दुनिया के लिए खतरा है। अगर परमाणु परीक्षण या फिर इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल छोड़े जाने जैसी उकसावे की कार्रवाई होती है तो हम एक बार फिर कड़े कदम उठाने की चेतावनी देते हैं। ये थे चो यक के शब्द। संयुक्त राष्ट्र ने उत्तर कोरिया के मिसाइल और परमाणु परीक्षण पर रोक लगाई हुई है, लेकिन वो इसका उल्लंघन करते हुए 5 परमाणु परीक्षण और कई मिसाइलों के परीक्षण कर चुका है। उधर दक्षिण कोरिया पहुंचे अमरीकी उपराष्ट्रपति माइक पेंस ने एक सैन्य छावनी में अमरीकी सैनिकों से कहा,
The opportunity for me to be here today at such a time as this is a great privilege for me. But let me assure you, under President Trump's leadership,
मेरे लिए आज यहाँ मौजूद रहना एक सौभाग्य की बात है। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि राष्ट्रपति ट्रंप के नेतृत्व में दक्षिण कोरिया के साहसी लोगों के साथ हमारा ऐतिहासिक गठबंधन इतना मजबूत है जो पहले कभी नहीं था। आपकी और भगवान की मदद से इस प्रायद्वीप में आज़ादी हमेशा बरकरार रहेगी। ये थे माइक पेंस के शब्द। अमेरिका उत्तर कोरिया को लेकर लगातार दबाव बढ़ाने में जुटा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कह चुके हैं कि उत्तर कोरिया के परमाणु खतरे से निपटने के लिए अमेरिका अकेले कार्रवाई करने को तैयार है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति माइक पेंस आगे की रणनीति पर चर्चा करने के लिए कल दक्षिण कोरिया के नेताओं से बातचीत करेंगे।
तो कोरियाई प्रायद्वीप में बरकरार है तनाव, रिपोर्ट सुना रही थी हरिता कांडपाल। रुख भारत का करते हैं। भारत में भी एक बहस जारी है 3 तलाक को लेकर, लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने साफ कर दिया है कि वो 3 तलाक समेत किसी भी शरिया कानून पर सरकारी दखल को स्वीकार नहीं करेगा। पूरी जानकारी के साथ लखनऊ से समीर आत्मज मिश्र।
3 तलाक पर देश भर में चल रही बहस के बीच ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने साफ कर दिया है कि शरिया कानून में किसी भी तरह की सरकारी दखलंदाजी के वो खिलाफ है। लखनऊ के नदवा कॉलेज में 2 दिन तक चली बोर्ड की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में बोर्ड के महासचिव मौलाना वली रहमानी ने दावा किया कि हिंदुस्तान के ज़्यादातर मुसलमान मुस्लिम पर्सनल लॉ में किसी भी तरह का बदलाव नहीं चाहते। इसके अलावा 3 तलाक की समीक्षा के लिए एक महिला विंग का गठन किया गया है जो तलाक के मामलों की निगरानी करेगी। गलत तरीके से तलाक देने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। लेकिन जब बोर्ड के सदस्यों से ये पूछा गया कि क्या व्हाट्सएप, ईमेल, कुरियर या फिर फोन पर तलाक दिए जाने पर उसे तलाक माना जाएगा, मौलाना रहमानी का जवाब था,
आपकी शादी का दावतनामा अगर पोस्टकार्ड से भेजा जाए तो क्या दावतनामा को सही नहीं समझा जाएगा।
दरअसल 3 तलाक को लेकर मुस्लिम महिलाओं में ही पिछले कुछ दिनों से काफी मुखर बहस चल रही है। कई महिला संगठन इसके खिलाफ खड़ी हो गई हैं, लेकिन बोर्ड के सदस्यों का दावा था कि उनकी ओर से चलाए गए हस्ताक्षर अभियान में 5 करोड़ लोगों ने इसके पक्ष में हस्ताक्षर किया है, जिसमें 1 करोड़ से ज्यादा मुस्लिम महिलाएं हैं। लेकिन 3 तलाक के खिलाफ अभियान चलाने वाली लखनऊ की सामाजिक कार्यकर्ता आयशा कहती हैं,
जो तलाक का मेथड हम लोग इंडिया में फॉलो करते हैं वो शरीयत के हिसाब से हम नहीं करते हैं। जो हमारा अनएजुकेटेड सेक्टर है, लोअर मिडिल क्लास है, पुअर सोसाइटी में जो लोग रहते हैं, उनको जो मौलाना साहब बताएंगे, जो सोसाइटी में चल रहा है, उनको लगता है कि वही चीज़ सही है। तो उस माइंडसेट को अब चेंज करना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन हम कोशिश ज़रूर करेंगे।
बहरहाल बोर्ड की बैठक में तमाम मुद्दों के अलावा राम मंदिर विवाद पर भी चर्चा की गई, जिस पर कोर्ट के फैसले पर अमल करने पर सहमति हुई है। समीर आत्मज मिश्र, BBC लखनऊ।
राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक भारतीय जनता पार्टी ने भी की है और उसमें भी तीन तलाक की बात उठी। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता नितिन गडकरी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वो इस मुद्दे पर समाज में संघर्ष नहीं चाहते, लेकिन किसी भी प्रकार की कुप्रथा के खिलाफ समाज को जगाकर न्याय देने की कोशिश होनी चाहिए। इस बैठक में राजनीतिक प्रस्ताव भी पारित हुआ। इस बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं भुवनेश्वर से संदीप साहू।
अपने भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नया भारत बनाने के अपने उस संकल्प को दोहराया, जिसका जिक्र उन्होंने उत्तर प्रदेश में भाजपा की भारी जीत के बाद किया था। उन्होंने स्पष्ट संकेत दिया कि आने वाले दिनों में उनकी सरकार का पूरा ध्यान गरीबों के उत्थान और सामाजिक न्याय की प्रतिष्ठा पर होगा। बैठक के बाद प्रधानमंत्री के भाषण के बारे में पत्रकारों को सूचना देते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा,
गरीब व्यक्ति को केंद्र बिंदु मानकर उसके जीवन को सस्टेनेबल बनाने वाली, उसको गरीबी, भुखमरी और बेरोजगारी से मुक्ति दिलाने वाली नई इंडिया की सोच, नई राजनीतिक दृष्टि प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में दी और मिशन मोड में इस उद्दिष्ट को, इस सपनों को पूरा करना, यही हमारा राजनीतिक उद्दिष्ट है, ये भी उन्होंने बताया।
इससे पहले कार्यकारिणी ने अपना राजनीतिक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें पिछड़े वर्ग कमीशन को संवैधानिक मान्यता देने की बात कही गई। साथ ही इससे जुड़ी बिल को पारित करने में राज्यसभा में अड़चने पैदा करने के लिए कांग्रेस और दूसरी विपक्षी पार्टियों की निंदा की गई। राजनीतिक प्रस्ताव में पार्टी के कार्यकर्ताओं से आग्रह किया गया कि वे GST बिल के बारीकियों को अच्छी तरह से समझें और इससे मिलने वाले फायदों के बारे में लोगों को समझाएं। आज सुबह राजभवन में एक समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उड़ीसा में सन 1817 में हुए पाइक विद्रोह के 16 प्रमुख योद्धाओं के वंशजों को सम्मानित किया। इसके बाद वे भुवनेश्वर के प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर में गए और वहां पूजा की। मंदिर के अहाते में मोदी ने करीब 15 मिनट बिताए और लोगों से मिले। अपराह्न 4 बजे वे सूरत के लिए रवाना हो गए। संदीप साहू, BBC, भुवनेश्वर।
आगे बढ़ते हैं। भारत प्रशासित कश्मीर में कल सुरक्षा बलों की गोली लगने से एक युवक की मौत के विरोध में आज अलगाववादियों ने बंद बुलाया था। उधर श्रीनगर लोकसभा उपचुनाव में जीत दर्ज करने वाले नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने भी जम्मू कश्मीर में गवर्नर रूल लागू करने की मांग उठाई है। इस सीट पर सिर्फ 7% वोट पड़े थे। ऐसे में उनके पास ये मांग उठाने की कितनी मॉरल अथॉरिटी है, इस सवाल पर डॉक्टर अब्दुल्ला ने BBC से कहा,
इतनी मॉरल अथॉरिटी है कि मैं हिंदुस्तान के ऐवान को हिला दूंगा, ये याद रखिएगा। मैं किसी का एजेंट नहीं हूँ, मैं इस रियासत का एजेंट हूँ और मैं इस रियासत के लिए ऐसे लड़ूंगा, अगर वो पार्लियामेंट कांपेगी नहीं तो मैं फारूक अब्दुल्ला नहीं।
डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से पूरी बातचीत आप कल सुबह नमस्कार भारत में सुन सकते हैं। और अब वक्त है उस खास प्रस्तुति का, जिसका हमारे तमाम संगीत प्रेमी श्रोताओं को हर रविवार रहता है इंतजार। संग संग गुनगुनाओगे मैं, आज बात उनकी जिनकी आवाज में सुनने वालों को ईश्वर की झलक मिलती थी। पारखी जिनके गीतों में सौंदर्य तलाशते थे, उनका रचा संगीत और गीत कई पीढ़ियों को सम्मोहित करते रहे हैं। हम बात कर रहे हैं हेमंत कुमार की। कला समीक्षक यतीन्द्र मिश्र से सुनिए महान संगीतकार हेमंत कुमार के संगीत सफर की पूरी कहानी। प्रस्तुत करता है मोहनलाल शर्मा।
संग संग गुनगुनाओगे, कला समीक्षक यतीन्द्र मिश्र के साथ।
सुनो दुनिया वालों, या मुझको अभी चुप रहने दो, मैं गम को खुशी कैसे कह दूं, जो कहते हैं उनको कहने दो।
ईश्वर यदि गाता होता तो उसकी आवाज हेमंत कुमार की तरह होती। जी हाँ, यही कहा था संगीतकार सलील चौधरी ने जब वो हेमंत कुमार की आवाज की तारीफ कर रहे थे। यही ठीक भी था, हेमंत कुमार जैसे कलाकार के आवाज की आभा अपने अंतिम रूप में ईश्वरीय खनक के नजदीक मिलती है, और अगर वह संगीतकार के रूप में हमसे मिल रही हो तो वहाँ भी शोरगुल वाले समय को लांघती हुई एकदम शांत और सहजता के परिवेश को कोई सुंदरता देती हुई। चंपाकली का एक गीत, शांति और वेदना के इसी वैभवशाली माहौल को सुनने के लिए देखा जा सकता है। लता मंगेशकर की सादगी भरी आवाज जैसे बारिश बीत जाने के बाद धुली पुछी हरियाली के बीच से निकलकर अपना सौंदर्य पा रही हो। उनकी चांदी की घंटियों से खनकते हुए कोमल स्वर कई बार वैसी ही किसी चांदी की पायल में लगे हुए छोटे घुंघरुओं के मानिंद हैं, जिनका विकल्प धुन के स्तर पर ढूंढना मुश्किल होगा। फिर वो धुन अगर हेमंत कुमार के संगीत निर्देशित फिल्मों से उठकर आती हो तब तो वहाँ कोमलता का स्वर और भी अधिक गाढ़ा नजर आता है। आप आसानी से ऐसे स्वरों को बार बार हेमंत कुमार के यहाँ पा सकते हैं, जैसे बता दो सितारों से आगे ये कैसा जहां है, ख्यालों के मंदिर ये ख्वाबों के महल, समझ में ना आए ये दुनिया कहां है। कोमलता का ये भाव सिर्फ दुर्गेश नंदिनी में ही नहीं बल्कि ताज, साहबीबी और गुलाम, मिस मेरी, कोहरा, बिन बादल बरसात और खामोशी में भी झरता हुआ महसूस होता है। लगता है जैसे एक मिठास का झरना हो, वहाँ प्रेम और सुंदरता, खिलखिलाहट और उत्साह, उमंग और रवानगी सभी अपने आप शामिल हैं। आप उनके गीतों में मौजूद सौंदर्य को किसी दूसरे जहान में जाता हुआ भी देख सकते हैं, एक ऐसी जगह जो हेमंत कुमार के प्रेरणा पुरुषों की जगह रही है। वे रवींद्र संगीत से प्रभावित गायक हैं, और ऐसे रवींद्र संगीत से प्रभावित गायक जिनकी शुरुआती गायन में न्यू थिएटर्स के पंकज मलिक का साफ तौर पर प्रभाव देखा जा सकता है। इसी के चलते वे कई बार खुद को छोटा पंकज कहलाना भी पसंद करते थे। हालांकि इस बात से और इस प्रभाव से निकालने में उनके मित्र और प्रयोगधर्मी संगीतकार सलिल चौधरी ने उनकी मदद की थी। हेमंत कुमार की अपनी खुली हुई आवाज और संगीत निर्देशन का एक सुंदर पहलू कोहरा के इस गीत में उभरता है। आप सुनना चाहेंगे ये गाना? ये नयन धरी धरी, ये जाम भरे भरे, जरा पीने दो, ये नयन धरी। कोहरा और 20 साल बाद के गानों की चर्चा करते हुए एक रोचक बात हेमंत कुमार के संगीत निर्देशन में यह भी मिलती है कि कई बार उन्होंने कुछ फिल्में भी बनाई, और ये फिल्में रहस्य रोमांच कथा पर आधारित थी। इन फिल्मों के हॉन्टिंग सॉन्ग्स बनाने में हेमंत कुमार को महारत रही। आज ये जाना पहचाना तथ्य है कि लता मंगेशकर के करियर के शुरुआती दौर में जब लंबी बीमारी से वे उठी थी और अपने गाने को लेकर किसी तरह का उत्साह और खनक महसूस नहीं कर पा रही थी, उस समय चुपचाप हेमंत कुमार ने उनसे एक गीत रिकॉर्ड करवा लिया था। जी हाँ, वो गीत प्रैक्टिस में गाया जा रहा था, लेकिन हेमंत कुमार ने अपने साजिंदों के साथ उस गाने को चुपचाप रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया था। आइए उस गीत से मिलते हैं।
जरा देख ले आकर परवाने, तेरी कौन सी है मंजिल, कहीं दीप जले कहीं दिल,
कहीं
दीप जले कहीं दिल। जी हाँ, यही वो गाना था जिसकी रिकॉर्डिंग को सुनकर लता मंगेशकर अचानक से चौंक पड़ी थी कि क्या ऐसा गाना मैं फिर से गा सकती हूँ। कहीं दीप जले कहीं दिल के अलावा कोहरा का, झूम झूम ढलती रात और बिन बादल बरसात का, बिन बादल बरसात न होगी, ऐसे रहस्य प्रधान गीत हैं जो उनके दूसरे रहस्य प्रधान गीतों से मुकाबला कर सकते हैं। फिर चाहे वो मदन मोहन की वो कौन थी का, नैना बरसे रिमझिम रिमझिम हो, या खेमचंद प्रकाश का महल का आएगा आने वाला। ये देखना भी हेमंत कुमार के सांगीतिक जीवन में बड़ी चीज है कि कैसे उन्होंने अपने पूर्ववर्ती संगीतकारों से मिलकर अपना जहान बड़ा बनाया था। जी हाँ, उनके संगीत के आरंभिक प्रभावों में जो लोग शामिल हैं उनमें कमल दास गुप्ता, पंडित अमरनाथ और सलिल चौधरी के नाम आते हैं। और ये भी कि रवींद्र संगीत और गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर की कविताओं के प्रति भी यह पार्श्व गायक आसक्त था। हम में से कम लोग जानते होंगे कि हेमंत कुमार ने अपने करियर के शुरुआती दौर में कोलंबिया रिकॉर्ड्स के लिए रविंद्रनाथ टैगोर के कुछ कविताओं का गायन करके बाजार में उतारा था। बंगाली भद्रलोक संस्कृति के एक बड़े अनुयायी रहे हेमंत कुमार ने अपनी पहचान भी सबसे पहले जिस फिल्म से बनाई, दरअसल वो बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ पर आधारित थी और उसका वह गीत वंदे मातरम आज भी कालजयी माना जाता है। हम हेमंत कुमार पर बात कर रहे हैं। हालांकि वंदे मातरम गाने के लिए सारी तारीफें अपने हिस्से लता मंगेशकर बटोर ले गई थी, लेकिन स्वयं लता जी हेमंत कुमार के बारे में क्या कहती हैं? वो हमेशा ये कहती हैं कि हेमंत कुमार की आवाज ऐसी है जैसे कोई साधु मंदिर में बैठकर कोई भजन गा रहा हो। ये देखना भी अलग से विमर्श का विषय बन सकता है कि लता मंगेशकर और हेमंत कुमार के युगल प्रेम गीत आज बड़े प्रभावी ढंग से याद किए जाते हैं और उनका विन्यास इतना खूबसूरत है कि हम लता किशोर, लता रफ़ी या लता मन्ना डे के ड्यूएट के परिप्रेक्ष्य में भी हेमंत कुमार और लता के गाने को सुन सकते हैं। फिर वह जनक जनक पायल बाजे का नैन सो नैन नाही मिलाओ हो, या शबाब का चंदन का पलना, रेशम की डोरी, झूला झूलाओ निंदिया को तोरी। और एस डी बर्मन ने लता मंगेशकर और हेमंत कुमार की आवाज़ों का सुंदर इस्तेमाल जिस गीत के लिए किया वो गाना आज भी बड़ी खूबसूरती से याद किया जाता है। जी हाँ, ये रात ये चांदनी फिर कहाँ, सुन जा दिल की दास्तां। हेमंत कुमार और लता मंगेशकर के डुएट में ये देखना बड़ा सुंदर लगता है कि कैसे गायकी में उनके गले की हरकतें, आलाप, तान और मीड़ का काम बड़े खूबसूरत ढंग से तराशा गया है। मैं एक ऐसा डुएट यहाँ आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ जो लता मंगेशकर और हेमंत कुमार की आवाज़ का प्रतिनिधि उदाहरण माना जाता है। रोशन के संगीत से सजा ममता का ये गाना शायद आप आज तक भूले ना होंगे।
छुपा लो यूं दिल में प्यार मेरा, कि जैसे मंदिर में लो दिए की,
तुम अपने चरणों में रख लो मुझको, तुम्हारे चरणों का फूल हूं मैं।
हर तरह का संगीत रचने में समर्थ इस पारखी संगीतकार के यहाँ मिलने वाली मौलिक संगीत दृष्टि के पीछे निरापद मुखर्जी, पांचू गोपाल बोस और फड़ी बनर्जी जैसे योग्य संगीत गुरुओं का हाथ रहा है। हेमंत कुमार जो खुद बहुत बड़े पार्श्व गायक और संगीतकार रहे हैं, इन तीन बड़े गुरुओं के माध्यम से अपना संगीत हमारे सामने लेकर आते हैं। फ फणी बनर्जी के बारे में तो ये मशहूर रहा कि वे उस्ताद फैयाज खां के शिष्य रहे। ये देखना फिर एक मजेदार तकनीकी मामला बन जाता है कि उस्ताद फैयाज खां की परंपरा में पार्श्व गायकी के लिए क्या कोई नोटेशन या कोई हरकत हेमंत कुमार सीख पाए थे। हेमंत कुमार की बनाई तमाम फिल्मों में एक फिल्म नागिन ऐसी है जिसने अपने समय में बहुत बड़ा कारोबार किया था। आज हम जिस तरह के 100 करोड़ी कारोबार की फिल्मों की चर्चा करते हैं, नागिन, अनारकली और उस जमाने की बैजू बावरा जैसी फिल्में तब उस श्रेणी में आती थी जिस समय संगीत फिल्मों के लिए पैसे मुहैया कराता था। और इस फिल्म का जो गाना है मन डोले मेरा तन डोले, उसमें जो बीन का संगीत है वो उनके असिस्टेंट रहे कल्याण जी ने बजाया था। जी हाँ, वही कल्याण जी आनंद जी नाम से बाद में एक बड़ी संगीतकार जोड़ी बनते हैं। क्ले वायलिन नाम का एक वाद्य था जिसको लेकर कल्याण जी ने वो बीन की धुन बनाई और उसमें उनका सहयोग रविशंकर शर्मा ने किया था जो बाद में रवि के नाम से मशहूर संगीतकार हुए और ये दोनों संगीतकार हेमंत कुमार के सहायक थे। आनंद मठ, नागिन, 20 साल बाद, कोहरा, चंपाकली जैसी फिल्मों का सुंदर संगीत बनाने वाले और अपने व्यक्तित्व में सादगी लिए हुए हेमंत कुमार का ये गाना सुनना चाहिए जो उनके संगीतकार व्यक्तित्व को उतनी ही खूबसूरती से तराश कर हमारे सामने लाता है जैसा कि उनका अपना संगीत था और जैसा वे खुद पार्श्व गायन करते थे। कोमल, शांत और ठहरे हुए झील के पानी की मानिंद।
यतीन्द्र मिश्र के इस प्रस्तुति का संपादन किया था अजित सारथी ने। हमें रहेगा आपकी राय का इंतजार। इस कार्यक्रम को आप दोबारा सुनना चाहें तो रुक कर सकते हैं bbchindi.com का। आज यानी 16 अप्रैल को मशहूर अभिनेता चार्ली चैपलिन पैदा हुए थे। आप उनके बारे में दिलचस्प जानकारियां चाहते हैं तो आपका स्वागत है bbchindi.com पर। और अब वक्त है खेल समाचारों का। स्टूडियो में मौजूद हैं आदेश कुमार गुप्त जी। तो क्या बैडमिंटन से बात करेंगे या आईपीएल से शुरुआत?
जी वात्सल्य, बैडमिंटन से शुरुआत करेंगे क्योंकि सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का फाइनल आज भारतीय खिलाड़ियों के लिए यादगार रहा क्योंकि फाइनल में दोनों ही खिलाड़ी भारत के थे लेकिन जीत लगी भारत के बी साई परिणीत के हाथ जब इन्होंने किदांबी श्रीकांत को 55 मिनट के संघर्ष के बाद 17-21, 21-17, 21-12 से हराया। महिला एकल वर्ग का फाइनल शीर्ष वरीयता हासिल चीन ताइपे की ताइजो यंग के नाम रहा। खिताबी मुकाबले में उन्होंने चौथी वरीयता हासिल स्पेन की कैरोलिना मारिन को 38 मिनट में ही 21-15, 21-15 से बात दी। और अब अगर आईपीएल 10 की बात की जाए तो पहले मुकाबले में आज मुंबई इंडियंस ने अपने ही घर में खेलते हुए गुजरात लायंस को 6 विकेट से मात दी। मुंबई इंडियंस के सामने जीत के लिए 177 रनों का लक्ष्य था जो उसने 19.3 ओवर में 4 विकेट खोकर हासिल किया। मुंबई के लिए नीतीश राणा ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 53 रन बनाए जबकि कप्तान रोहित शर्मा 40 रन बनाकर नाबाद रहे। आज दूसरा मुकाबला थोड़ी ही देर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और राइजिंग पुणे सुपर जॉइंट्स के बीच खेला जाएगा।
यानी और ये दोनों ऐसी टीम है जिन दोनों को जीत का इंतजार है। शुक्रिया आदेश जी। और अब आखिर में सुन लेते हैं मुख्य समाचार एक बार फिर संदीप सोनी से।
बीबीसी समाचार। कोरियाई प्रायद्वीप में बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका के उपराष्ट्रपति माइक पेंस बातचीत के लिए दक्षिण कोरिया में मौजूद हैं। तुर्की में संसदीय शासन प्रणाली हो या राष्ट्रपति शासन प्रणाली, इस सवाल पर देश में आज जनमत संग्रह हुआ है। यूरोप पहुंचने की कोशिश कर रहे लगभग 20 प्रवासियों की लीबिया के तट पर डूबने से मौत हो गई है। नेपाल की राजधानी काठमांडू में सेना के एक ठिकाने पर चीन और नेपाल ने अपना पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू कर दिया है। भारत में 3 तलाक के मुद्दे पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है कि वो शरिया कानून में किसी भी तरह की सरकारी दखलंदाजी के खिलाफ है। बीबीसी समाचार।
दिन भर में आज इतना ही। स्टूडियो का संचालन कर रहे थे अजित सारथी। आपसे अगली मुलाकात सुबह 6:30 बजे नमस्कार भारत में होगी। तब तक खबरों के अपडेट के लिए हमारी मल्टीमीडिया वेबसाइट bbchindi.com आपके साथ है जहां आप आ सकते हैं, इन कार्यक्रमों को भी दोबारा सुन सकते हैं और ताज़ा तरीन खबरों का अपडेट भी ले सकते हैं। वात्सल्य राय को दीजिए सभी साथियों के साथ अनुमति। नमस्कार।